बाइबल व्याख्यान चार की मैथ्यूसन कहानी यीशु 2024 देव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह बाइबल की कहानी पर डॉक्टर डेव मैथ्यूसन का व्याख्यान क्रमांक चार है। इस खंड में वह यीशु के जीवन और शिक्षाओं में पांच प्रमुख विषयों भूमि, वाचा, मंदिर, भगवान के लोग और राजत्व का पता लगाएंगे। हम कहानी पर गौर कर रहे हैं जिसे मैं बाइबल की कहानी कहता हूँ। मैंने सुझाव दिया कि साहित्यिक प्रकारों की विविधता के बीच और नीचे एक एकीकृत कहानी है जिसमें कई सूत्र शामिल हैं। मैंने कहा कि कहानी की पृष्ठभूमि उत्पत्ति एक और दो में सृजन कथाओं में है और फिर अध्याय तीन में जो जटिलता उत्पन्न होती है उसे बाइबल के बाकी हिस्सों में कुछ अर्थों में सुधारा जाएगा। लेकिन अध्याय एक और दो में हमने सभी प्राथमिक सेटिंग और प्राथमिक कहानी कहानी की शुरुआत के सभी तत्वों को देखा। ईश्वर मानवता का निर्माण करता है और पूरी सृष्टि में उसकी महिमा और उसके शासन को फैलाने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में आदम और हव्वा को अपनी छवि में बनाता है। वह भूमि जो उसने उन्हें दी है आशीर्वाद का स्थान है। वह स्थान है जहां परमेश्वर निवास करेगा और अपने लोगों के साथ निवास करेगा। जब तक वे परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए अनुबंध के रिश्ते को खत्म करते रहेंगे, जब तक वे आज्ञा का पालन करेंगे, तब तक वे आशीर्वाद की भूमि और उस स्थान पर रहेंगे जहां परमेश्वर मौजूद हैं। ईडन गार्डन पवित्र स्थान है जहां भगवान अपने लोगों के साथ रहते हैं, मंदिर का बगीचा, और आदम और हव्वा को वहां ईश्वर के साथ निवास करना होगा और उनके छवि वाहक और प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें पूरी सृष्टि में ईश्वर की महिमा और उनके शासन का प्रसार करना होगा। फिर भी आदम और हव्वा उस आदेश को स्थापित करने या पूरा करने में असफल रहे जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था और इसके बजाय पाप और अवज्ञा के कारण आदम और हव्वा को आशीर्वाद की भूमि मंदिर के बगीचे से निष्कासित कर दिया गया। उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति की भूमि से निर्वासित कर दिया गया है ताकि उत्पत्ति के अध्याय तीन के बाद बाइबल के बाकी हिस्सों को एक तरह से उत्पत्ति अध्याय एक और दो में मानवता के लिए अपने इरादे को बहाल करने के भगवान के तरीके के रूप में देखा जा सके। और कहानी के बड़े हिस्से को छोड़कर हमने इब्राहीम कहानी को देखा, इब्राहीम के बारे में और कैसे परमेश्वर ने इब्राहीम और उसके माध्यम से इसराइल राष्ट्र को वह साधन बनने के लिए चुना जिसके द्वारा मानवता के लिए परमेश्वर के इरादे को बहाल किया जाएगा। तो हम उन्हीं सभी तत्वों को देखते हैं। परमेश्वर उन्हें मंदिर के द्वारा आशीर्वाद के स्थान के रूप में भूमि देगा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करेगा। यदि वे वाचा का पालन करते हैं और उसका पालन करते हैं तो भगवान आशीर्वाद से युक्त एक अनुबंध संबंध में प्रवेश करते हैं, उस भूमि पर एक आशीर्वाद जहां भगवान का मंदिर है और जहां भगवान अपने लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन यदि वे इनकार करते हैं तो एक अभिशाप और निर्वासन और भूमि से निष्कासन आज्ञा पालन, और बिल्कुल वैसा ही होता है। आदम और हव्वा की कहानी और इज़राइल की कहानी के बीच एक समानता है जहां इज़राइल मानवता के लिए भगवान के इरादे को पूरा करने में आदम और हव्वा से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता है, तो इज़राइल को भी उस वाचा का उल्लंघन करने के कारण भूमि से निष्कासित कर दिया गया है या भूमि से, बगीचे से और भगवान की उपस्थिति के स्थान से निर्वासित किया गया है जो भगवान ने अपने लोगों के साथ स्थापित की थी। इसलिए भविष्यवाणियां उस समय की आशा करती हैं जब ईश्वर वास्तव में इज़राइल के माध्यम से मानवता के लिए अपने इरादे को बहाल करेगा। याद रखें, भगवान को एक तरह से दो समस्याओं का समाधान करना है। उनमें से एक संपूर्ण मानवता के पाप की व्यापक वैश्विक समस्या या सार्वभौमिक समस्या है और उत्पत्ति एक और दो में समस्त सृष्टि के बारे में उसके इरादे की पूर्ति की कमी है। लेकिन अब भी इज़राइल ईश्वर का चुना हुआ साधन था जिसके द्वारा वह स्थिति को सुधारता था, फिर भी इज़राइल भी विफल रहा है। इसलिए परमेश्वर को एक अर्थ में पहले इज़राइल को बचाना होगा। उसे इसराइल को उसकी भूमि में और उसके साथ वाचा के रिश्ते को बहाल करना होगा। भगवान उनके बीच में रहेंगे और भगवान उन पर शासन करेंगे और इसराइल भगवान के शासन और महिमा को फैलाएंगे ताकि अंततः इसराइल के उद्धार के माध्यम से पूरी पृथ्वी भगवान के उद्धार और बहाली का अनुभव कर सके और भगवान की उत्पत्ति 1 और 2 से समस्त सृष्टि के लिए इरादा भी स्थापित किया जाएगा। इसलिए भविष्य सूचक ग्रंथ कहानी और कहानी के सभी तत्वों को उठाते हैं और एक उम्मीद के साथ समाप्त होते हैं, एक भविष्यवाणी की उम्मीद कि वह कहानी कैसे पूरी होगी और अपने चरम तक पहुंचेगी। और हमने पिछले सप्ताह कहा था कि जो कुछ बचा है वह प्रदर्शित करना है कि वह कहानी कैसे और वह अपेक्षा कैसे पूरी होती है। और इसलिए मैं जो करना चाहता हूं वह 5 कम से कम 5 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्य विषय भी हो सकते हैं, लेकिन ये कम से कम 5 हैं जिन पर मैंने ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना है। हमने ईश्वर के लोगों के विषय और इन सभी विषयों को उत्पत्ति 1 और 2 और सृष्टि तक जाते हुए देखा, जो इसराइल की कहानी के माध्यम से भविष्यवाणी पाठ में अपना रास्ता बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों का विषय, वाचा का विषय, परमेश्वर का अपने लोगों के साथ वाचा बनाना, भूमि या सृजन का विषय, नई सृष्टि, मंदिर का विषय या परमेश्वर का अपने लोगों के साथ निवास करना, और राजत्व का विषय, परमेश्वर का शासन करना अपने लोगों पर, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग ईश्वर के उपशासनकर्ता के रूप में ईश्वर के स्थान पर शासन करते हैं, ईश्वर के राज्य का प्रसार करते हैं और पूरी पृथ्वी पर उसके शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हमने भविष्यवाणी पाठ में देखा था, वह तब डेविडिक राजा में केंद्रित था। तो आपकी ये सभी अपेक्षाएं हैं और ये 5 विषय भविष्य सूचक अपेक्षा में उभर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि उन 5 विषयों को नए नियम में कैसे शामिल किया जाता है, और मुझे इस बारे में कुछ टिप्पणियां करने दीजिए कि नए नियम में ये विषय कैसे पूरे होते हैं। सबसे पहले, हम पहले ही कह चुके हैं कि इन धागों को सुलझाना, इन सभी धागों को खोले बिना किसी एक को बाहर निकालना लगभग असंभव है। वे एक सुसंगत कहानी में एक साथ जुड़ते हैं ताकि अनुबंध के बारे में बात किए बिना एक विषय, कहें भगवान के लोगों के बारे में बात करना असंभव हो। भूमि के बारे में बात किए बिना और राजत्व के बारे में बात किए बिना वाचा के विषय पर बात करना असंभव है। भूमि और मंदिर की अवधारणा को उजागर किए बिना लोगों पर राजत्व और दाऊद के शासन के बारे में बात करना असंभव है। तो वे सभी एक साथ अटूट रूप से बंधे हुए हैं। तो पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब नए नियम में इनमें से 1 या 2 विषयों का उल्लेख किया जाता है तो यह दूसरों की उपस्थिति मानता है, यानी लेखक एक सूत्र और विषय को बाहर नहीं निकालेंगे और सुझाव देंगे कि किसी तरह वह बाकी सभी को अलग करके पूरा हो जाए। लेकिन एक सुसंगत कहानी के रूप में यदि कहानी का एक पहलू नए नियम में उजागर हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि कहानी के अन्य पहलू सतह के पीछे हैं और उजागर हो गए हैं, पूरी कहानी उद्घाटित है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि इन धागों को पूरा करने के तरीके में 2 भेदों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले यह महसूस करना है कि नए नियम में यह कहानी, जिस तरह से यह कहानी और ये 5 विषय नए नियम में पूरे होते हैं, सबसे पहले वे यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरे होते हैं। तो यीशु मसीह कहानी का चरमोत्कर्ष बन जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। वह ही वह व्यक्ति है जो इन विषयों को उठाता है और उन्हें पूर्णता तक लाता है। अथ पूर्णता की कुंजी यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। हालांकि विस्तार से ये विषय उसके लोगों, चर्च में पूरे हो जाते हैं, जिसमें वे मसीह में शामिल हो जाते हैं, कि वे मसीह के हैं, कि वह उनका प्रतिनिधि है, बाद में पॉलिन भाषा का उपयोग करने के लिए, और कि यीशु उनका है सिर और वे मसीह में हैं। हम देखेंगे कि नए नियम में चर्च परमेश्वर के लोग भी इन वादों में भाग लेते हैं। उनमें वादे भी पूरे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मसीह में पूरे होने के माध्यम से। तो सबसे पहले, फिर से पहला अंतर यह है कि ये वादे मसीह में पूरे होते हैं, और फिर विस्तार से वे इस तथ्य के आधार पर उनके लोगों में पूरे होते हैं कि उनके लोग उनके हैं। दूसरा अंतर पहले से ही, लेकिन अभी तक नहीं के बीच बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय अंतर में पाया जाता है, यह तथ्य कि इसराइल से किए गए वादे और ईश्वर के आने वाले राज्य और एक नई रचना और ईश्वर की बहाली की भविष्यवाणी की उम्मीद है। लोगों, वह अपेक्षा नए नियम में दो चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले इसका उद्घाटन यीशु मसीह और उनके लोगों के माध्यम से होता है, फिर भी वह उद्घाटन केवल एक पूर्वाभास या अंतिम परिणति का डाउन पेमेंट है। जब भविष्य में मैं कहानी में इन वादों को उठाऊंगा तो हम इसकी परिणति पाएंगे। तो कहानी का अंत मसीह में पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन केवल आंशिक रूप से। परमेश्वर का राज्य पहले ही आ चुका है। जब आप गॉस्पेल, विशेष रूप से मैथ्यू को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि भगवान का राज्य पहले से ही यीशु मसीह के व्यक्तित्व में मौजूद है। परमेश्वर का राज्य मसीह के व्यक्तित्व और उद्घोषणा और मंत्रालय में और विस्तार से उसके लोगों में शक्तिशाली रूप से सक्रिय है, लेकिन यह केवल एक प्रारंभिक भुगतान है और राज्य की अंतिम समाप्ति से पहले उसकी उपस्थिति है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि हम देखेंगे कि कहानी ये पांच विषय जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फिर भी और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने कहानी के इन पांच प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चुना है। ये विषय जो सृष्टि के आरंभ से शुरू होते हैं, इसराइल की कहानी के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं और फिर उस कहानी के निष्कर्ष की भविष्यवाणी की उम्मीद में पाए जाते हैं, इन दो चरणों में पूरे होते हैं। वे मसीह और उनके अनुयायियों के सामने पहले से ही पूर्ण और उद्घाटन किए गए हैं, लेकिन अंतिम परिणति और उस कहानी के अंतिम निष्कर्ष से पहले, जिसे हम मसीह का दूसरा आगमन कहते हैं। और इसलिए इन विषयों पर हमारी शेष चर्चा उन भेदों पर केंद्रित होगी। आज हम देखेंगे कि कैसे कहानी और ये पांच विषय मसीह और फिर बाकियों और उनके अनुयायियों पर केंद्रित और पूर्ण होते हैं, लेकिन शेष समय जो हम नए नियम में बिताते हैं वह मुख्य रूप से इस पर केंद्रित होगा कि कैसे नए नियम के बाकी दस्तावेज गॉस्पेल के बाहर, लेकिन नए नियम के बाकी दस्तावेज भी मसीह और उनके अनुयायियों में उस पूर्ति की पुष्टि करते हैं, वह पहले से ही होगा। और फिर अंतिम खंड जो हम एक साथ करेंगे वह अभी तक नहीं आए पहलू पर ध्यान केंद्रित करेगा। नई रचना में यह कहानी अपनी परिणति और चरम परिणति तक कैसे पहुंचती है, और वहां हम मुख्य रूप से प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां ये सभी पांच विषय कहानी के समापन यानी अंतिम चरण में एक साथ आते हैं। लेकिन इसके आलोक में आइए इस कहानी के चरमोत्कर्ष के रूप में यीशु पर ध्यान केंद्रित करें। और जिस तरह से मैं इसे संभालना चाहता हूं वह यह है कि मैं मुख्य रूप से मैथ्यू के सुसमाचार पर ध्यान केंद्रित करूंगा। हालांकि मैं इन विषयों पर चर्चा करते समय अन्य पाठ भी लाऊंगा, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि यह सिर्फ मैथ्यू नहीं है, बल्कि अन्य गॉस्पेल भी हैं, जो कहानी और इन विषयों की मसीह के व्यक्तित्व में पूर्ति की पुष्टि करते हैं। और ऐसा करने में मुझे यह प्रदर्शित करने की आशा है कि गॉस्पेल या तो स्पष्ट रूप से इस कहानी पर निर्भर करते हैं या कम से कम मानते हैं। और फिर मैं यह सुझाव नहीं देना चाहता कि सुसमाचार की प्रत्येक अंतिम पंक्ति को किसी तरह कहानी में जबरदस्ती शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन फिर मुख्य रूप से गॉस्पेल या तो कहानी को मानते हैं या स्पष्ट रूप से उस पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यह अब यीशु मसीह में अपने चरमोत्कर्ष और पूर्णता तक पहुंचता है। तो मैथ्यू अध्याय 1-4 में, हम मैथ्यू अध्याय 1-4 में केवल कई तत्वों को देखकर शुरुआत करेंगे, यह देखने के लिए कि यह कहानी का अंत वहां तक कैसे पहुंचती है। और फिर मैथ्यू के पहले चार अध्यायों के अलावा कुछ अन्य खंडों को स्पर्श करें, और फिर यह दिखाने के लिए कि यह केवल मैथ्यू के लिए अद्वितीय नहीं है, अन्य गॉस्पेल से कुछ पाठ लाएं। लेकिन मैथ्यू अध्याय एक से चार तक। मैथ्यू अध्याय एक इस तरह से शुरू होता है, जो कि इब्राहिम के पुत्र डेविड के पुत्र मसीहा यीशु की वंशावली का विवरण है। अब यीशु को दी गई ये दो उपाधियां, इब्राहिम का पुत्र और दाऊद का पुत्र, तुरंत यीशु की कहानी को पुराने नियम की कहानी से जोड़ती हैं। और हम इन दो शब्दों को बाद में देखेंगे। लेकिन डेविड का पुत्र शीर्षक स्पष्ट रूप से यीशु की कहानी को दो शमूएल साथ डेविड के साथ की गई वाचा और डेविड के वंश में आने वाले एक राजा की भविष्यवाणी की उम्मीद के साथ जोड़ता है, जो डेविड के सिंहासन पर बैठेगा। इब्राहिम के पुत्र का उल्लेख यीशु को एक महान राष्ट्र के इब्राहिम से किए गए वादों से जोड़ता है, और कि पृथ्वी के सभी राष्ट्र अंततः धन्य होंगे। अब मैथ्यू स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करने के अपने इरादे का संकेत देता है कि यीशु की कहानी, वह कहानी जो वह यीशु के बारे में बताने जा रहा है, पुराने नियम में शुरू हुई कहानी का चरमोत्कर्ष और निरंतरता है। और इसलिए मैथ्यू को नए टेस्टामेंट में सबसे पहले शामिल करने के अन्य कारणों के अलावा कम से कम इसका विहित क्रम उपयुक्त है, क्योंकि मैथ्यू ने शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से यीशु की कहानी को पुराने टेस्टामेंट के साथ जोड़ने के अपने इरादे की घोषणा की है। अब मैथ्यू अध्याय दो से शुरुआत करते हुए हम यह देखना शुरू करेंगे कि ये सभी सूत्र कहां एक साथ आते हैं। और अध्याय दो में मैथ्यू जो काम करता है उनमें से एक यीशु का चित्रण है। कहानी का दूसरा भाग अध्याय दो में एक प्रमुख विषय है, यीशु को एक उद्धारकर्ता या एक उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया जाएगा, जो अपने लोगों इसराइल को एक नए पलायन में निर्वासन से बाहर ले जाता है। तो आप निर्गमन विषय को देखेंगे, जो सबसे पहले ईश्वर के पास जाता है, जो पहले अपने लोगों को बचाता है, क्योंकि उसने अपनी कहानी और मानवता और सृजन के लिए अपने इरादे को बहाल करने के अपने इरादे को पूरा करना शुरू कर दिया है। अब हम देखेंगे कि निर्गमन विषय को उठाया जाता है। पुनः मानो मैथ्यू कहना चाहता है कि यीशु पुराने नियम की कहानी की निरंतरता है। अब सृष्टि से परमेश्वर ने जो इरादा किया था वह यीशु मसीह के रूप में पूरा होने जा रहा है, जो एक नए पलायन में अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा। और जैसे ही हम कुछ विवरणों, पांच विषयों में से कुछ और कहानी को अधिक विस्तार से देखना शुरू करते हैं, आपको पलायन के साथ संबंध दिखाई देंगे। तो आइए परमेश्वर के लोगों के विषय से शुरुआत करें। और फिर याद रखें, इन विषयों को अलग करना असंभव है, वे एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए किसी एक के बारे में बात करते समय हम अक्सर सीमा को लांघकर दूसरे विषय पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान के लोग इस वंशावली में अध्याय एक एक से सत्रह तक जो दिलचस्प है वह यह है कि मैथ्यू ने निर्वासन का कम से कम चार बार उल्लेख करने के लिए इस वंशावली की संरचना की है। इसलिए उदाहरण के लिए अध्याय एक पद ग्यारह में वह अपनी वंशावली में कहता है, वह बेबीलोन में निर्वासन के समय यकोनिया और उसके भाइयों के पिता योशिया के पास आता है। और फिर पद 12 और बेबीलोन में निर्वासन के बाद अगले पद में वह फिर से इसका उल्लेख करता है। और फिर श्लोक 17 जहां उन्होंने इसका दो बार उल्लेख किया है। तो इब्राहिम से दाऊद तक की सभी पीढ़ियां 14 पीढ़ियां हैं, और दाऊद से लेकर बेबीलोन की बंधुआई तक 14 पीढ़ियां, और निर्वासन से लेकर बेबीलोन तक। तो ध्यान दें कि मैथ्यू कितनी बार निर्वासन या बेबीलोन निर्वासन पर जोर देता है। मानो अब यह कहना हो कि यीशु अब निर्वासन का अंतिम अंत है। यीशु को पता चल जाएगा कि आदम और हव्वा क्या करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनका निर्वासन हुआ। इसराइल के लोग क्या करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनका निर्वासन हुआ। अब यीशु अंततः अपने लोगों को निर्वासन से बाहर निकालकर एक नई राह पर ले जा रहे हैं। निर्गमन अध्याय 2 और उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 से इसराइल और अंततः पूरी सृष्टि के लिए अपने इरादे को स्थापित करना और पूरा करना। अब इससे पहले कि हम देखें कि मैथ्यू भगवान के लोगों के विषय के साथ क्या करता है, जिसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है, यीशु इसराइल को पुनर्स्थापित करने का इरादा। इसलिए हमें निर्वासन के उल्लेख में अध्याय 1 को पढ़ना है। हमें इसे पढ़ना है क्योंकि यहाँ ईश्वर के लोगों की बहाली है, जिसका अनुमान भविष्यवाणी पाठ में लगाया गया है। हमने उन सभी ग्रंथों को देखा जो परमेश्वर के लोगों की वापसी और बहाली की आशा करते हैं। अब यीशु उसे लाएंगे। लेकिन एक दिलचस्प अग्रिम नोट अध्याय 3 और 9 और 10 में हमें इस बात का संकेत मिलता है कि उस बहाली में क्या शामिल होगा। श्लोक 8 से प्रारंभ करते हुए यह मैथ्यू 3:8-10 है। यीशु कहते हैं, पश्चाताप के योग्य फल लाओ। अपने आप में यह कहने का साहस न करो, हमारा पूर्वज इब्राहीम है। अब दिलचस्प बात यह है कि मैथ्यू ने दावा किया कि यीशु इब्राहीम का पुत्र है। तो सवाल का एक हिस्सा यह है कि इब्राहीम का कौन है, इब्राहीम के बच्चे कौन हैं? उत्पत्ति में इब्राहीम से किए गए वादों में कौन भाग लेता है? यीशु कहते हैं, यह अनुमान मत लगाओ। वह यहूदी नेताओं, फरीसियों और सदूकियों से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, अपने आप से यह कहने का अनुमान मत करो, हमारे पूर्वज इब्राहीम हैं, जो उन्होंने शारीरिक रूप से किया था। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब भी कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर पड़ी है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। तो दिलचस्प बात यह है कि यहाँ यीशु के मंत्रालय की शुरुआत में ही इस बात का संकेत है कि यीशु कैसे परमेश्वर के लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे, और इसमें केवल भौतिक वंशावली से अधिक कुछ शामिल होगा। यीशु कहते हैं, यह मत मान लीजिए कि सिर्फ इसलिए कि आप अपने वंश को इब्राहीम से जोड़ सकते हैं, यह किसी तरह स्वचालित रूप से आपको ईश्वर के लोगों के रूप में नामित करता है। यीशु कहते हैं, जो आवश्यक है वह है पश्चाताप करना और उस राज्य का फल सहन करना जो यीशु मसीह अब स्वयं लाने जा रहा है। इसलिए यीशु के मंत्रालय के आरंभ में ही हमें एक संकेत मिलता है कि परमेश्वर के लोग केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि उन लोगों से भी अधिक प्रभावित होने वाले हैं जो इसराइल के हैं। वास्तव में इससे पहले भी मैथ्यू अध्याय 2 में बुद्धिमान लोगों, मागी के आने और यीशु से मिलने का अनुमान लगाया गया था। मागी विदेशी गैर यहूदी ज्योतिषी हैं जो यीशु से मिलने के लिए विदेशी भूमि से आते हैं, जब यहूदी अधिकारी और नेता वादा किए गए डेविडिक राजा के आगमन की खबर पर यीशु की पूजा करने के लिए बेथलेहम के अपने पिछले दरवाजे से बाहर भी नहीं जाते हैं। लेकिन इसके बजाय अन्य जाति आते हैं और वे यीशु की पूजा करते हैं और पश्चाताप के लिए उपयुक्त फल लाते हैं। तो मैथ्यू पहले से ही अनुमान लगाना शुरू कर रहा है कि ये भगवान के लोग कौन हैं और भगवान के लोग होने का क्या मतलब है, यीशु कैसे भगवान के लोगों को बहाल कर रहे हैं। लेकिन मैथ्यू में एक और छोटा सा मोड़ आता है। मैथ्यू यह भी आश्वस्त है कि मुख्य रूप से इसराइल का इतिहास और नीति अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरी और केंद्रित है। कुछ अलग अलग तरीकों से मैथ्यू ने यीशु को इसराइल की कहानी का पूर्वाभ्यास कराया और उसे दोहराया। इसलिए उदाहरण के लिए हमने पहले ही मैथ्यू के अध्याय 2 में सुझाव दिया है, यीशु एक नए पलायन के संदर्भ में इसराइल के इतिहास का पूर्वाभ्यास करते हैं और उसे दोहराते हैं। उदाहरण के लिए श्लोक 15 पर ध्यान दें, मैं बैक अप लूंगा और 14 पढ़ूंगा। यह मैथ्यू अध्याय 2 है। फिर जोसेफ यह फिर से अध्याय एक और दो में यीशु के जन्म और उनके प्रारंभिक बचपन की कहानी है। और अब श्लोक 14, फिर जोसेफ उठे, लिया रात को बालक और उसकी माता मिस्र को चले गए और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहे। यह इसलिए हुआ कि जो वचन यहोवा ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहाया कि मैंने अबके पुत्र को मिस्र से बुलाया, वह पूरा हो। वह अब है, यदि आप पीछे जाएं और इस पाठ को देखें, तो मिस्र से मैंने अपने बेटे को बुलाया है, जो भविष्यवक्ता होशे द्वारा बोला गया है। यह होशे 11 के उस संदर्भ में स्पष्ट रूप से संदर्भित है। यह इज़राइल को संदर्भित करता है। यह यीशु के बारे में बिल्कुल भी भविष्यवाणी नहीं है। यह स्पष्ट रूप से मिस्र में ईश्वर के पुत्र के रूप में इज़राइल की एक ऐतिहासिक स्मृति है। तो अब मैथ्यू इसे यीशु पर कैसे लागू करता है? खैर, वह यीशु को सच्चे इरादे और इज़राइल के सच्चे भाग्य को पूरा करने वाला समझता है। तो वह एक अर्थ में उनके इतिहास का पूर्वाभ्यास पुनर्पाठ कर रहा है। अपने लोगों इज़राइल, अपने बेटे इज़राइल के साथ व्यवहार करने वाले भगवान का पैटर्न अब भगवान द्वारा अपने बड़े बेटे यीशु मसीह को बचाने और वितरित करने के साथ दोहराया जाता है। इसलिए यीशु को सच्चे इज़राइल के रूप में देखा जाता है। यीशु की कहानी इज़राइल की कहानी के साथ मेल खाती है, यह प्रदर्शित करते हुए कि यीशु अब एक नए निर्वासन में मिस्र से इज़राइल के रूप में वितरित किया गया है, जैसा कि भगवान का पुत्र था। और यीशु अब अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने और मुक्ति दिलाने के लिए एक नए पलायन का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके अलावा अध्याय 3 और अध्याय 3 के अंत और अध्याय 4 की शुरुआत में यीशु के बपतिस्मा में जो अध्याय 3 और अध्याय 4 के अंत में हमारे लिए वर्णित है, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि इज़राइल के साथ कहानी और समानताएं जारी हैं, ताकि यीशु इज़राइल की तरह जॉर्डन नदी में एक नदी में बपतिस्मा लेते हुए पाया जाए, ठीक उसी तरह जैसे इज़राइल को लाल सागर में पहुंचाया गया और बपतिस्मा दिया गया और बचाया गया और छुड़ाया गया। इस बिंदु पर लाल सागर के माध्यम से मिस्र से बचाए जाने के बाद वे परीक्षण और परीक्षा के लिए जंगल में प्रवेश कर गए। फिर भी आपको कहानी याद है, इज़राइल निश्चित रूप से विफल रहा, अंततः विफल रहा और अपनी भूमि से निर्वासित हो गया। तो ध्यान दें कि अध्याय 4 में क्या होता है। तो अध्याय 3 में यीशु को बपतिस्मा दिया जाता है, फिर यीशु को मिस्र से छुड़ाया गया। वह एक अर्थ में अपने बपतिस्मा में लाल सागर में जाता है। अब उसे इसराइल की तरह जंगल में ले जाया गया है ताकि उसकी परीक्षा हो। और दिलचस्प बात यह है कि पुराने नियम के सभी पाठ, जैसे कि यीशु शैतान द्वारा प्रलोभित है, सभी पुराने नियम के पाठ जिनका उपयोग यीशु शैतान के प्रलोभन का जवाब देने के लिए करता है, वे सभी पाठ व्यवस्था विवरण से आते हैं। उनमें से अधिकांश ऐसे ग्रंथ हैं जो व्यवस्था विवरण से आते हैं और इज़राइल का उल्लेख करते हैं। अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा मत करो। यह इस बात का संदर्भ था कि इज़राइल को क्या नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा न केवल आपको इज़राइल राष्ट्र के साथ समानताएं मिलती हैं, जिससे यीशु को इज़राइल की तरह देखा जाता है। उसे मिस्र से बाहर जंगल में ले जाया गया, जहां उसका परीक्षण किया गया और उसकी परीक्षा ली गई, ठीक वैसे ही जैसे इज़राइल की हुई थी। फिर भी सृष्टि कथा में उत्पत्ति के साथ समानताएं न देखना कठिन है, जहां यीशु आदम और हव्वा की तरह हैं, रेगिस्तान में शैतान द्वारा उन्हें लुभाया जाता है। वह रिश्ते में प्रलोभित है। सबसे पहला प्रलोभन भोजन के संबंध में है, एक अर्थ में जैसे आदम और हव्वा थे। ताकि आपके पास यह दिलचस्प तस्वीर हो, और कई टिप्पणियों ने इज़राइल के साथ संबंध और आदम और हव्वा के साथ संबंध दोनों को मान्यता दी है, और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। जो हो रहा है वह एक तरह से यीशु दोनों कहानियों को दोहरा रहा है। वह इज़राइल की कहानी को दोहरा रहा है और दोहरा रहा है, लेकिन ऐसा करते समय सृजन की व्यापक कहानी के संदर्भ में भी। तो आपके पास यह पैटर्न पुराने नियम में विकसित हो रहा है जिसे अब यहां उठाया गया है। जैसा कि हमने कहा, आदम और हव्वा को सृष्टि के लिए परमेश्वर के इरादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर की छवि में बनाया गया था। वे परीक्षा में पड़ जाते हैं और परीक्षा में असफल हो जाते हैं और उन्हें जंगल में निर्वासित कर दिया गया है। भूमि से परमेश्वर की उपस्थिति से जंगल में निर्वासित कर दिया गया। तब ईश्वर ने मानवता और सृजन के लिए अपने इरादे को पूरा करने के लिए इज़राइल को अपने साधन के रूप में चुना। उन्हें भी ईश्वर के बीच में निवास करते हुए आशीर्वाद की भूमि में लाया जाता है। उन्हें भी परीक्षा दी जाती है और परखा जाता है, और आदम और हव्वा की तरह वे असफल हो जाते हैं, और इसलिए उन्हें अदन के बगीचे से और भगवान के आशीर्वाद के स्थान से निर्वासित कर दिया गया है। अब यीशु आता है। आदम और हव्वा की तरह और इज़राइल की तरह यीशु को भी परीक्षण के लिए जंगल में ले जाया जाता है। फिर भी यीशु परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सच्चे इज़राइल के रूप में यीशु ही वह हैं जो न केवल इज़राइल की कहानी का पूर्वाभ्यास करते हैं बल्कि उसे पूरा भी करते हैं। यीशु ही वह व्यक्ति हैं जो इज़राइल और समस्त मानवता की नीति को पूरा करते हैं। और याद रखें, यह कहानी मुख्य रूप से इज़राइल की कहानी को दोहराती है, लेकिन शायद हमें सृष्टि की गूंज बगीचे में प्रलोभन भी उत्पत्ति से सुनना है, ताकि यीशु इज़राइल के लिए बल्कि सभी के लिए ईश्वर की नियति और इरादे को पूरा करें। इंसानियत, तो इसका मतलब यह है कि हम जो देखना शुरू कर रहे हैं वह यह है कि यीशु फिर से परिभाषित करना शुरू कर रहे हैं कि ईश्वर के लोग होने का क्या मतलब है। परमेश्वर के लोग भविष्य सूचक अपेक्षा से कैसे पुनर्स्थापित होंगे? वास्तव में परमेश्वर के लोग होने का क्या अर्थ है? इज़राइल के इतिहास का पूर्वाभ्यास करके, इसे पूरा करके, ईश्वर के लोगों को उनके वास्तविक भाग्य तक लाकर, अब ईश्वर के लोगों में सदस्यता, ईश्वर के लोगों से संबंधित, अब जातीय या राष्ट्रीय रूप से परिभाषित नहीं है, बल्कि अब पूरी तरह से परिभाषित है यीशु मसीह के साथ किसी के रिश्ते के प्रकाश में, जो इज़राइल की नीति को पूरा करता है, जो ईश्वर के लोगों को पूरा करता है। तो पहले से ही यीशु एक अर्थ में परमेश्वर के लोग होने के अर्थ को फिर से परिभाषित करना शुरू कर रहे हैं। खैर, जो इज़राइल की कहानी और नीति का पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति करता है और पूर्ति लाता है, वह अब भगवान के लोग होने के अर्थ का केंद्र बिंदु है, और इसलिए परमेश्वर के लोगों में सच्ची सदस्यता, जैसा कि यीशु ने फरीसियों से कहा था, यह मत मानिए कि आप इब्राहिम के पूर्वज हैं, या आप दावा करते हैं कि इब्राहिम आपका पूर्वज है, यह मत सोचिए कि यह आपको मिलता है। लेकिन अब यह यीशु मसीह के साथ रिश्ते और उसकी आज्ञाकारिता के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए यीशु स्पष्ट रूप से यीशु के आगमन के साथ परमेश्वर के लोगों को बहाल करने का इरादा रखता है। यीशु के आगमन के साथ परमेश्वर के लोगों की बहाली की भविष्यवाणी की उम्मीद है। लेकिन साथ ही उत्पत्ति 1 और 2 से एक ऐसा लोग जो अंततः पूरी मानवता के भाग्य को भर देगा, अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरा हो रहा है, और निहितार्थ से जो विश्वास और आज्ञाकारिता में उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यह हमें अगले विषय पर लाता है। यही वह विषय है जिस पर मैं फिर से ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैं अध्याय 1 से 4 पर ध्यान केंद्रित करूंगा, लेकिन अब मैं उससे आगे विस्तार करना शुरू करूंगा। राजत्व का विषय। अध्याय 1 में हम पहले ही देख चुके हैं कि यीशु को दाऊद के पुत्र मसीह का मसीहा नामित किया गया था। और वास्तव में यह उन अनेक उदाहरणों में से पहला है जहां मैथ्यू के सुसमाचार में यीशु को डेविड के पुत्र के रूप में संदर्भित किया गया है। और मेरे पास उन सभी को पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन यह भी ध्यान दें कि अध्याय एक श्लोक 20 में यूसुफ को स्वयं दाऊद का पुत्र कैसे कहा जाता है। अन्यत्र लोग यीशु को दाऊद के पुत्र के रूप में पहचानते हैं। तो यह यीशु का वर्णन करने वाला एक प्रमुख उद्देश्य है। और फिर से यह सब पुराने नियम की अपेक्षाओं पर वापस जाता है और याद दिलाता है। दो शमूएल अध्याय 7 से आरंभ और वह वाचा जो परमेश्वर दाऊद के साथ बनाता है कि उसके सिंहासन पर सदैव कोई न कोई बैठा रहेगा, और फिर भविष्य सूचक अपेक्षा तक विस्तारित होगा कि जब परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेगा और उन्हें भूमि पर लाएगा तो इसमें शामिल होगा दाऊद के सिंहासन की पुनर्स्थापना और दाऊद के वंश में एक राजा का उन पर शासन करना। इसलिए यीशु को दाऊद का पुत्र कहकर मैथ्यू स्पष्ट रूप से इस पूरी कहानी को उजागर करता है। और हमने कहा कि इसका महत्व यह भी है कि डेविडिक राजत्व का विषय अंतः सृजन तक जाता है। डेविडिक राजा को ईश्वर का उपशासक बनना था, इस तरह से ईश्वर का शासन स्थापित होगा और अंतः संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर का शासन स्थापित होगा। अब दाऊद के पुत्र के रूप में यीशु उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए यहाँ है। इसके अलावा इसे यीशु की परमेश्वर के राज्य की उद्घोषणा में देखा जा सकता है। सभी गॉस्पेल सहमत हैं, सिनोप्टिक गॉस्पेल विशेष रूप से सहमत हैं कि यीशु के राज्य या उपदेश की प्राथमिक और विशिष्ट विशेषता भगवान के राज्य का आगमन है। ईश्वर का राज्य निकट है, जो फिर से एक विश्वव्यापी राज्य की उम्मीद की बहाली का हिस्सा है, जो ईश्वर के उपशासनकर्ता राजा के माध्यम से आता है, जो डेविड के सिंहासन पर बैठेगा। और इसलिए अब यीशु सारी सृष्टि पर वह राज्य परमेश्वर का शासन लाता है। लेकिन फिर भी अंततः यह इस राज्य के माध्यम से और डेविडिक राजा के माध्यम से है कि सभी मानवता के लिए भगवान का इरादा है कि उनकी महिमा और उनकी संप्रभुता और शासन पूरी सृष्टि में फैल जाएगा। अब इसका उद्घाटन दाऊद के पुत्र यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से किया जा रहा है, जो उस राज्य की पेशकश करने के लिए आता है। एक क्लासिक पाठ जो दर्शाता है कि अध्याय 12 और छंद 27 और 28 है। और यहाँ जो दिलचस्प है, आप देख सकते हैं कि भगवान के शासन और भगवान के राज्य की स्थापना के दिल में क्या है। यीशु ने अभी अभी एक दुष्टात्मा को निकाला है और अब फरीसियों द्वारा शैतान के नाम पर उन्हें बाहर निकालने का आरोप लगाया जा रहा है। और इसलिए अब यहाँ यीशु क्या कहते हैं, पद 27, यदि मैं बीलजेबब के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे ओझा उन्हें किसके द्वारा निकालते हैं, इसलिए वे आपके न्यायाधीश होंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, यदि मैं शैतानों को बालजबूब के नाम से नहीं निकालता, परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। दूसरे शब्दों में राक्षसों को बाहर निकालने से यह एक संकेत है कि भगवान का सार्वभौमिक राज्य अब उत्पत्ति 1 और 2 की पूर्ति में आ गया है, यानी शैतान द्वारा हड़प ली गई सारी सृष्टि में फैलने के लिए भगवान का शासन अब स्थापित हो रहा है। अर्थात संसार अब शैतान का राज्य है और अब इसे पलटा जा रहा है, इसे शैतान से लिया जा रहा है और स्वयं परमेश्वर को सौंपा जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह के माध्यम से बुराई की शक्तियों को पराजित करने और शैतान के दायरे और राज्य पर आक्रमण करने के माध्यम से अब भगवान का राज्य डेविडिक राजा के माध्यम से स्थापित होना शुरू हो गया है, ताकि उनके शासन को पूरी सृष्टि में फैलाने के लिए भगवान के इरादे को पूरा किया जा सके। पुनः अन्य सुसमाचारों में डेविड के पुत्र और डेविडिक राजा का डेविडिक विषय शामिल है। ल्यूक अध्याय 1 और श्लोक 31 ल्यूक की शुरुआत में एक उदाहरण है। यह मैरी से किया गया वादा है जब मैरी को पता चला कि वह अपने बेटे के साथ रहेगी। यह कहता है वह महान होगा, उसका पुत्र महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसे उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन देगा। तो ल्यूक के पास डेविड का एक मजबूत पुत्र या डेविडिक वादा विषय भी चल रहा है। इसलिए राजत्व का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमने फिर से देखा। यह इसराइल की पुराने नियम की कहानी और डेविडिक राजा की भविष्यवाणी की उम्मीद से जुड़ा हुआ है। लेकिन डेविडिक राजा को ईश्वर का उपशासक बनना था और वह साधन था जिसके माध्यम से ईश्वर का विश्वव्यापी राज्य अंतः उत्पत्ति 1 और 2 में ईश्वर के इरादे को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा। चूंकि हम मैथ्यू 1 और 4 से थोड़ा बाहर घूम चुके हैं, आइए मैं कुछ अन्य विषयों पर नजर डालता हूँ। सबसे पहले मैं बस एक पल के लिए परमेश्वर के लोगों के विषय पर वापस लौटना चाहता हूँ। सुसमाचार में 2 अन्य स्पष्ट संकेत इस विषय को प्रदर्शित करते हैं कि यीशु पुराने नियम की कहानी की पूर्ति में परमेश्वर के लोगों को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। उनमें से एक है यीशु द्वारा 12 शिष्यों को चुनना। तथ्य यह है कि उन्होंने 12 को चुना इसलिए नहीं कि वह आदर्श छोटा समूह था या यीशु छोटे समूहों में थे, बल्कि संख्या 12 इसराइल की 12 जनजातियों का प्रतिबिंब थी। इसलिए यीशु ने 12 प्रेरितों को चुनकर यीशु परमेश्वर के लोगों की स्थापना कर रहे हैं। वह इसराइल को पुनर्स्थापित कर रहा है। वह भविष्यवाणी की अपेक्षाओं की पूर्ति में परमेश्वर के लोगों को पुनर्स्थापित कर रहा है। तथ्य यह है कि दिलचस्प बात यह है कि मैथ्यू में हम यीशु को चर्च शब्द का उपयोग करते हुए पाते हैं। मैथ्यू यीशु का वर्णन करता है या यीशु की व्याख्या इस प्रकार करता है कि यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और नरक के द्वार उस पर विजय नहीं पा सकेंगे। चर्च शब्द को उन सभी चीजों से अलग करने की आवश्यकता है जो हम इसमें पढ़ सकते हैं, हमारे आधुनिक समय की संरचनाओं के बारे में, बड़ों और उपयाजकों के साथ और वह सब कुछ जो हम अपने चर्चों और पूजा आदि में करते हैं आदि। लेकिन चर्च शब्द जिसका हम अनुवाद करते हैं, चर्च वास्तव में एक शब्द है जिसका उपयोग सेप्टुआजेंट में किया गया था, जो पुराने नियम का ग्रीक संस्करण है, जिसका उपयोग इसराइल राष्ट्र की सभा या सभा का वर्णन करने के लिए किया गया था। तो अब यीशु कहते हैं, मैं अपना चर्च बनाने आया हूँ। यह 12 प्रेरितों पर आधारित है। यीशु अब पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन कर रहा है और पुनर्स्थापन की पुराने नियम की भविष्यवाणी की अपेक्षाओं को पूरा करने में भगवान के सच्चे लोगों को पुनर्स्थापित कर रहा है। लेकिन चलिए अन्य विषयों पर चलते हैं। इसके अलावा हम बाद में उस पर लौटेंगे, खासकर जब हम नए नियम के अन्य खंडों पर पहुंचेंगे। लेकिन वाचा के विषय के बारे में क्या, जो लोगों के विषय से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है? यदि परमेश्वर ने अपने लोगों को पुनर्स्थापित किया है और यदि यीशु दाऊद के पुत्र के रूप में उन पर शासन कर रहा है, तो उन्हें अब एक अनुबंधित रिश्ते में होना चाहिए। भगवान ने उनके साथ अपनी नई वाचा को बहाल किया होगा, जो विशेष रूप से इजेकील 36 और 37 में वापस जाते हैं, जहां डेविडिक शासन का विषय नई वाचा के विषय और अपने लोगों के साथ भगवान की वाचा की बहाली से निकटता से जुड़ा हुआ है। हमने पाया कि वास्तव में ऐसा ही होता है। यीशु द्वारा अपने लोगों के साथ एक नई वाचा स्थापित करने का सबसे स्पष्ट संकेत ल्यूक अध्याय 22 में पाया जाता है। और यीशु के उद्घाटन और उसे शुरू करने के बीच में जिसे हम प्रभु का भोज कहते हैं, जो फिर से फसह के भोजन की पूर्ति होती, क्या पद 20 में यीशु कहते हैं, उन्होंने भोज के बाद प्याले के साथ भी ऐसा ही किया और कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है वह मेरे खून में नई वाचा है। और इसलिए सुसमाचार में यीशु की मृत्यु के संदर्भ स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं, फिर यीशु को अपनी मृत्यु के माध्यम से नई वाचा का उद्घाटन करने के रूप में देखा जाता है। जबकि हम यहेजकेल और यिर्मयाह में पढ़ते हैं कि भगवान पाप की पूर्ण क्षमा करेंगे, वह पाप को मिटा देंगे और अशुद्धता को दूर करेंगे, वह उन्हें इस वाचा के रिश्ते के हिस्से के रूप में एक नया दिल और आज्ञाकारिता में जवाब देने की क्षमता देंगे। और इसलिए स्पष्ट रूप से यीशु को नए लोगों के साथ इस नई वाचा का उद्घाटन करते हुए देखा जाता है, जिसे वह अब पुनर्स्थापित करता है, जो 12 प्रेरितों पर आधारित है, और फिर से यीशु मसीह और मसीह के प्रति किसी की प्रतिक्रिया के आसपास केंद्रित है। मंदिर का विषय। हमने कहा कि उत्पत्ति 1 और 2 में ईडन गार्डन को एक पवित्र स्थान, एक अभयारण्य, एक मंदिर के रूप में देखा जाता था, और यहाँ तक कि तंबू और मंदिर का वर्णन भी तब हुआ जब इज़राइल जंगल में घूमता रहा और फिर भूमि में बस गया और मंदिर की एक और अधिक स्थायी संरचना का निर्माण किया, जिसकी ईडन गार्डन के साथ सभी प्रकार की प्रतिध्वनि थी। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि तंबू और मंदिर का मतलब ईडन का एक छोटा सा बगीचा था, जहां भगवान निवास करते थे और उनकी उपस्थिति उनके लोगों के साथ रहती थी। अब मंदिर का विषय भी सुसमाचारों में उठाया जाता है, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं। यदि यीशु लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए आए हैं और अब उन पर शासन करने के लिए डेविडिक राजा के रूप में आए हैं और उनके साथ एक वाचा संबंध स्थापित किया है, तो ऐसा लगता है कि मंदिर को पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की अपेक्षा के अनुसार पुनर्स्थापित किया जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति अब उसके लोगों के साथ विश्राम करेगी। और फिर हम बिल्कुल यही पाते हैं। हम इसे मैथ्यू में पहले से ही एक अर्थ में पाते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि मैथ्यू की पूरी किताब शुरुआत और अंत में बंधी हुई है। पुनः मैथ्यू, जो पहले से ही पहले कुछ अध्यायों में है, ने परमेश्वर के लोगों की पुनर्स्थापना का वर्णन किया है। यीशु को स्वयं सच्चे इज़राइल के रूप में देखा जाना चाहिए, जो इज़राइल की नीति को पूरा करता है। हम देखते हैं कि यीशु को उन पर शासन करने वाले एक मसीहा राजा के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन इसके संदर्भ में भी मैथ्यू के आरंभ और अंत में हम यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से अपने लोगों के साथ भगवान की उपस्थिति का यह नोट पाते हैं। उदाहरण के लिए मैथ्यू अध्याय 1 इन दो ग्रंथों में सबसे अधिक परिचित और प्रसिद्ध है, लेकिन मैथ्यू अध्याय 1 और श्लोक 23 में जब स्वर्गदूत जोसेफ और मैरी को बताता है कि उन्हें बच्चे का नाम क्या रखना है, तो यह श्लोक 21 में कहता है, वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। मैं इसे फिर से संदर्भ में लेता हूँ, यह मुख्य रूप से यीशु द्वारा इसराइल को बहाल करना, उन्हें उनके पापों से बचाना है। और यह सब इसलिए हुआ कि जो कुछ यहोवा ने कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। तो अब आपके पास यीशु मसीह के रूप में अपने लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति का यह मजबूत संकेत है। फिर भी जब आप सुसमाचार के अंत में जाते हैं, तथाकथित महान आलोक पाठ में, जिसे हम संक्षेप में फिर से देखेंगे, यह यीशु के कहने के साथ समाप्त होता है, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे दिए गए हैं, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उनका पालन करना सिखाओ। और स्मरण रखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो मैथ्यू की पुस्तक भगवान की उपस्थिति, यीशु मसीह के व्यक्तित्व में उनके लोगों के साथ उनके मंदिर की उपस्थिति के इस नोट से बंधी हुई है। जॉन का सुसमाचार, 4th सुसमाचार, और भी अधिक स्पष्ट है। अध्याय 1 में जॉन की शुरुआत में हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, एक ऐसा पाठ जिसे हम आमतौर पर क्रिसमस के समय उद्धृत या संदर्भित करते हुए सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हम यह सोचना बंद नहीं करते हैं कि इसमें क्या शामिल है। श्लोक 14 और वह शब्द जो स्पष्ट रूप से यीशु को संदर्भित कर रहा है, शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा या निवास किया, और हमने उसकी महिमा देखी है। मैं जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ वह वे दो शब्द हैं, वास या जिया और महिमा। कुछ लोगों ने माना है कि निवास का विचार तंबू बनाना या तंबू गाड़ना है, लेकिन विचार यह नहीं है कि यीशु अपने लोगों के साथ अस्थाई निवास लेने या कुछ समय के लिए तंबू लगाने के लिए आते हैं। ये दो शब्द कहीं अधिक गहरे हैं। दोनों शब्दों का उपयोग पुराने नियम में ईश्वर की उसके तंबू या उसके मंदिर में उपस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। वास्तव में यहेजकेल अध्याय 43 और पहले कुछ छंदों में श्लोक 1-7 तक ये दो शब्द महिमा और वास करने की क्रिया दोनों ईश्वर के युगांत शास्त्रीय मंदिर में अपनी उपस्थिति लेने के संदर्भ में पाए जाते हैं जिसे यहेजकेल देखता है। हमने उस पाठ को देखा और हमने सुझाव दिया कि ईजेकील के पहले दो अध्याय या 40, 41 और 42 पहले तीन अध्याय ईजेकील के युगांत शास्त्रीय मंदिर के दूरदर्शी दौरे को दर्ज करते हैं, जिसका पुनर्निर्माण तब किया जाता है जब इज़राइल उन पर शासन करने वाले डेविडिक राजा के साथ बहाल होता है। एक नई वाचा का रिश्ता, लेकिन फिर अध्याय 3 में दर्ज है कि कैसे भगवान की उपस्थिति अंततः उस मंदिर को भरने के लिए आती है। तो फिर ईजेकील के अध्याय 43 में हम पाते हैं कि भगवान की महिमा, कई बार यह कहती है कि भगवान की महिमा ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन यह भी कहता है कि वह वहां निवास करने या रहने के लिए आया था, क्रिया का एक समान रूप जिसे हम जॉन को अब अध्याय में उपयोग करते हुए पाते हैं, जॉन के सुसमाचार के 1:1-14 तक। तो यह वही है जो जॉन कह रहा है जब वह कहता है कि शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, यीशु मसीह के माध्यम से भगवान की मंदिर की उपस्थिति अब लोगों के साथ थी। ईश्वर की युगांतकारी उपस्थिति जिसे यहेजकेल और अन्य पुराने नियम के पैगंबरों में मंदिर को भरना था, अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में निवास करती है। तो स्पष्ट रूप से मंदिर का विषय मौजूद है। तो हमारे पास फिर से हमारे पास यीशु है जो अब अपने लोगों को बहाल करने, अपने लोगों को लाने, उन्हें अपने साथ रिश्ते में बुलाने के लिए आता है। यीशु मसीह जो स्वयं इज़राइल की नियति का पूर्वाभ्यास करते हैं, अब अपने लोगों को पुनर्स्थापित करने, डेविड के पुत्र के रूप में एक नई वाचा स्थापित करने, भगवान के इरादे की पूर्ति में उन पर शासन करने, अपना विश्वव्यापी शासन स्थापित करने के लिए आते हैं। और अब पुनर्निर्मित मंदिर के साथ यह भगवान की उपस्थिति अब लोगों के साथ आराम करने और यीशु मसीह के व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों के साथ रहने के लिए आ रही है, जिसके माध्यम से भगवान की महिमा अब निवास करती है और निवास करती है। आखिरी विषय जिस पर मैं गौर करना चाहता हूँ वह भूमि और सृजन का विषय है। यह थोड़ा अधिक कठिन है क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है। जैसा कि आप भगवान के लोगों के साथ पाते हैं और जैसा कि आप डेविडिक राजा थीम और मसीहा थीम के साथ पाते हैं, आपको भूमि का स्पष्ट संदर्भ नहीं मिलता है। लेकिन फिर मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस कहानी के हिस्से के रूप में इस जटिल कहानी ये सभी अन्य तत्व सुझाव देते हैं कि भूमि पर भगवान के लोगों की बहाली भी हो रही है। यदि इसराइल पुनः स्थापित हो गया है और यदि दाऊद के वंश का राजा अब उन पर शासन कर रहा है और एक विश्वव्यापी राज्य लेकर आया है, यदि परमेश्वर ने एक नई वाचा स्थापित की है, यदि उसके मंदिर की उपस्थिति अब बहाल हो गई है, तो भूमि मौजूद होनी चाहिए भी। आखिर कैसे? ठीक है, कम से कम मुझे लगता है कि गॉस्पेल में बस कुछ संकेत हैं जो मुझे लगता है कि हम नए नियम के बाकी कुछ हिस्सों में थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। लेकिन मैं तर्क दूंगा कि पहले से ही सुसमाचारों में हम यह देखना शुरू कर रहे हैं कि भूमि का वादा अंततः यीशु मसीह के व्यक्ति में और राज्य और मोक्ष में पूरा हो गया है जो वह अब लाता है, वह मुक्ति जो वह अब लाता है लोगों को। कुछ दिलचस्प पाठ जिनमें मेरी रुचि है। सबसे पहले यूहन्ना अध्याय 15 और प्रथम 17 पद। मैं इस पाठ पर बहुत अधिक समय खर्च नहीं करना चाहता, बल्कि केवल भूमि से संबंध का उल्लेख करना चाहता हूँ, और मैं जॉन अध्याय 15 पर उनकी कुछ टिप्पणियों के लिए व्हीटन कॉलेज में न्यू टेस्टामेंट के प्रोफेसर गैरी बर्च पर निर्भर हूँ। लेकिन जॉन अध्याय 15 भगवान के लोगों के रिश्ते की तुलना यीशु मसीह से करने के लिए एक बेल और शाखाओं की कल्पना का उपयोग करता है। यह परमेश्वर के लोगों के विषय के लिए भी प्रासंगिक है। पुराने नियम में इज़राइल को संदर्भित करने के लिए जिस बेल का उपयोग किया गया था, अब यीशु उसे स्वयं पर लागू करते हैं। वह सच्ची बेल है, जैसा हमने मैथ्यू में देखा था। यीशु इसराइल के लोगों के इरादे और नीति को पूरा करते हैं, परंतु अब यीशु दाखलता है। और दिलचस्प बात यह है कि यूहन्ना अध्याय 15 में लोगों को उसमें बने रहने के लिए बुलाने की भाषा और फल उत्पन्न करने के उल्लेख पर ध्यान दें। तो यीशु यह कहकर शुरू करते हैं, यूहन्ना 15, मैं सच्ची दाखलता हूँ, श्लोक 1 से शुरू करते हुए। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता दाख उगाने वाला है। वह मुझ में से हर उस शाखा को हटा देता है जिस पर फल नहीं लगता। प्रत्येक शाखा जो फल लाती है, वह उसे अधिक फल लाने के लिए काटता छांटता है। जो वचन मैंने तुमसे कहा है, उससे तुम पहले ही शुद्ध हो चुके हो। जैसे मैं तुम में रहता हूँ, वैसे ही मुझ में बने रहो या बने रहो। जैसे डाली अपने आप फल नहीं ला सकती जब तक कि वह दाखलता में बनी न रहे, वैसे ही तुम भी जब तक मुझ में बने न रहो नहीं फल सकते। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह उस खंड में दो रूपांकन हैं, और उनमें से एक है स्थायी रहने की भाषा। संभवतः फिर से भूमि में बने रहने या उसमें रहने, भूमि में निवास करने की धारणा का सुझाव दिया गया है। लेकिन जो बात इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है वह है फलदायिता का विषय। हमने देखा कि कैसे विशेष रूप से पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने एक ऐसे समय का चित्रण किया जब इज़राइल वापस लौट आया और अपनी भूमि पर बहाल हो गया। यह फलने फूलने और फलने फूलने का समय होगा क्योंकि इज़राइल अपनी भूमि पर बहाल हो गया। ईडन गार्डन में पहली रचना की तरह यह प्रचुर मात्रा में फलदायी थी, इसलिए लोगों को फलदायी के रूप में संदर्भित करके मुझे लगता है कि आंशिक रूप से जॉन भविष्यवाणी की अपेक्षा से सृजन और भूमि पर वापसी की कल्पना को उजागर कर रहे हैं। इसलिए मसीह में बने रहकर और मसीह में निवास करके और भूमि में सृष्टि की फलदायिता पैदा करके मुझे लगता है कि जॉन का यह सुझाव देने का तरीका है कि भूमि का अंतिम वादा अब पूरा हो गया है। ईश्वर का आशीर्वाद और उपस्थिति जो भूमि के साथ जुड़ी हुई थी, अब अंततः यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूरी हो गई है। उसमें बने रहने से ही हम भूमि की उपज पैदा करते हैं। इसके अलावा यीशु की शिक्षा में यह दिलचस्प है कि लोग अब भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि वे परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। बाद में जब हम बाद के व्याख्यानों में शेष नए नियम को देखते हैं, तो मैं यह तर्क देने जा रहा हूं कि भूमि मुख्य रूप से यह दर्शाने के लिए कार्य करती है कि अब यीशु मसीह में क्या पूरा होता है। भूमि और भूमि के आशीर्वाद उन आशीर्वादों को चित्रित करने के लिए कार्य करते हैं जिन्हें नए नियम के लेखक अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में प्रस्तुत और पूर्ण होते हुए पाते हैं, जो अंततः नई रचना में अपनी पूर्ति पाते हैं। इसलिए नया नियम भूमि के वादों को पूरी तरह से भौतिकता से वंचित नहीं करता है। यह सिर्फ इतना है कि यह अंततः भूमि के वादे को पूरा होता हुआ पाता है, सबसे पहले यीशु मसीह में और राज्य में प्रवेश करने और राज्य का फल पैदा करने में, लेकिन फिर अंततः नई सृष्टि में जहां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक समाप्त होती है, लेकिन हम खुद से आगे निकल रहे हैं। कुछ अन्य संकेत नव सृजन से अधिक संबंधित हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान को संभवतः नई सृष्टि, विशेषकर यीशु के पुनरुत्थान के उद्घाटन के रूप में देखा जा सकता है। यहेजकेल 37 में देखे गए पाठों में से एक को याद करें, सूखी हड्डियों की घाटी, जहां एक अनुबंध संबंध में भूमि पर इसराइल की बहाली एक राजा के साथ उनकी भूमि पर बहाल हुई और डेविड की वंशावली उन पर शासन कर रही थी, जिसे जीवन देने के रूप में दर्शाया गया था। एक मृत शरीर, सूखी हड्डियां जो जीवित हो जाती हैं और ईश्वर उनमें जीवन फूंक देता है। यह आंशिक रूप से यीशु के पुनरुत्थान के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। तो फिर यह यीशु का पुनरुत्थान है, यह उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान है जो नई सृष्टि का उद्घाटन करता है। यह स्वयं यीशु मसीह में है कि भूमि के वादे अपनी अंतिम पूर्ति पाते हैं। तथ्य यह है कि यीशु ने सभी सुसमाचारों में मृतकों को चंगा किया और पुनर्जीवित किया। मुझे लगता है कि यशाया 65 और अन्य ग्रंथों जैसे नई रचना के ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, जहां मृत्यु को दूर किया जा रहा है। वह मृत्यु जो पाप के कारण पहली रचना में प्रवेश कर गई थी, अब यह नई रचना की विशेषता नहीं बताएगा। इसलिए उपचार और यहां तक कि अन्य चमत्कारों से, यहां तक कि प्रकृति के चमत्कारों से, लेकिन विशेष रूप से उपचार से और यहां तक कि उस समय जब यीशु मृतकों को जीवित करते हैं, इसे नई सृष्टि के जीवन का उद्घाटन करने के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका उद्घाटन यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान स्वयं करते हैं। इसलिए मेरी राय में मुझे लगता है कि पूर्ति के पहले से ही भाग में हम इसराइल की भूमि पर वापसी का वादा, भूमि का वादा और भूमि का आशीर्वाद देखते हैं, जो अंतः यशायाह जैसी पुस्तक में केंद्रित हो जाते हैं। नया निर्माण, हम पाते हैं कि वह यीशु मसीह में पहले ही पूरा हो चुका है। यह मसीह में बने रहने से है, यह फलप्रदता पैदा करने से है, आज्ञाकारिता के माध्यम से मसीह में नई सृष्टि का फल है। यह यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से है कि नई सृष्टि का जीवन, भूमि का आशीर्वाद अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में शुरू हुआ है। लेकिन फिर यह सब अभी भी उस अंतिम पूर्ति की ओर इशारा कर रहा है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो अध्याय 21 और 22 में प्रकाशित वाक्य जैसी पुस्तक की नई रचना में घटित होगी, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हमें मैथ्यू पर वापस लाने के लिए मैथ्यू की कहानी मैथ्यू और अध्याय 8 के अंत में तथाकथित महान आयोग में समाप्त होती है। मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन मुझे इसे जल्दी से फिर से पढ़ने दें। मत्ती अध्याय 28, जहां यीशु कहते हैं, यीशु ने आकर उनसे कहा, हे उसके चेलों, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें अर्थात सब जातियों को सिखाओ कि जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसका पालन करो। दूसरे शब्दों में जो हो रहा है वह यह है कि मैथ्यू के शुरुआती हिस्सों में हमने जो देखा है वह सच है। क्या यीशु ने अब इसराइल को बहाल कर दिया है? क्या वह अब डेविडिक राजा है जो उन पर शासन कर रहा है? अगर वह अब उन्हें वापस ले आया है, भूमि पर नई सृष्टि का उद्घाटन किया, उन्हें भूमि का आशीर्वाद दिया, यदि वह एक नई वाचा के रिश्ते में प्रवेश कर गया है, यदि भगवान की मंदिर उपस्थिति मसीह के माध्यम से है, अब अपने लोगों के साथ आराम कर रही है, तो मुक्ति और मोक्ष का आशीर्वाद प्रवाहित हो सकता है सारी पृथ्वी को डोट। इसलिए मैथ्यू का अंत मेरे विचार से मानवता के लिए ईश्वर के मूल इरादे की पूर्ति के साथ होता है कि मुक्ति का आशीर्वाद, उसकी महिमा और उसका शासन पूरी पृथ्वी को भर देगा। तो अब जबकि इसराइल बहाल हो गया है और भगवान ने अपने लोगों को फिर से स्थापित कर दिया है, अब मोक्ष का आशीर्वाद पृथ्वी के छोर तक प्रवाहित हो सकता है। तो मैथ्यू यह कहकर समाप्त करता है, इसलिए जाओ और सभी राष्ट्रों को शिष्य बना। वास्तव में ध्यान दें कि स्वर्ग और पृथ्वी में सभी अधिकार का उल्लेख मुझे दिया गया है। वह भाषा डैनियल अध्याय 7 पर वापस जाती है। फिर से यीशु ने सारी सृष्टि पर अपने सार्वभौमिक शासन में प्रवेश किया है, और इसलिए अब मुक्ति का आशीर्वाद उत्पत्ति 1 और 2 के लिए भगवान के इरादे की पूर्ति में मानवता के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए, अब मुक्ति का आशीर्वाद पूरी पृथ्वी पर जा सकता है। और इसलिए हम कहानी के सभी मुख्य विषयों, शुरुआत और सृजन, भगवान के लोगों के विषय वाचा भूमि और सृजन में वापसी की नई वाचा, भगवान के मंदिर के विषय और उनके लोगों पर शासन को देखते हैं। राजत्व का विषय, वे सभी अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में पूर्ण और चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं। और इसके अलावा अब इसराइल को पुनर्स्थापित करके, अब इसराइल की कहानी से निपटकर, अब पूरी सृष्टि की कहानी उत्पत्ति 1 और 2 पर वापस जाकर अब भी हल की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस कहानी को नए नियम के बाकी हिस्सों, अधिनियमों, पॉल के पत्रों और कुछ अन्य पत्रों में भी जारी पाते हैं? ये 5 मुख्य विषय कैसे हैं? यह कहानी शेष नए नियम में मसीह और उसके लोगों में पूर्णता के संदर्भ में कैसे पूरी होती और विकसित होती रहती है? अगली बार जब हम साथ होंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे कि नए नियम के बाकी हिस्सों में यह कहानी कैसे विकसित और पूरी होती रहती है।